नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए एक नई वाचा को स्थापित किया है और उसके बलिदान के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। आप हम सबकी सहायता करें ताकि आपका वचन प्रत्येक के जीवन में बात करने पाए। इतना ही नहीं, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार और निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई और छुटकारा दें, उन्हें शांति और आनंद दें, ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे इस बात को महसूस करने पाए कि आप उनके साथ हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर भी आप अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और देखेंगे कि जो यहूदी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, उनमें से कुछ विश्वासी अब भी व्यवस्था के रीति रिवाजों को निभा रहे थे, अर्थात मान रहे थे और पाप बलि चढ़ा रहे थे। अतः लेखक कहता है कि यह जानकर कि प्रभु यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है, हम पाप क्षमा के लिए पशु बलि चढ़ाएं तो वह प्रभु यीशु के लहू को पांव तले रौंदना है और उसकी मृत्यु को नकारा ठहराना है। ऐसा पाप जानबूझकर किया गया अनाचार है जिसकी क्षमा का प्रावधान कहीं नहीं है। परमेश्वर इसका दंड अवश्य देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह खतरे का संकेत है, अर्थात तिरस्कार का संकट। मेरे मित्रों, यह एक अत्यंत पावन चेतावनी है, इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 26 पद। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 21 पद में पत्रस कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। यह एक चेतावनी है। यह चेतावनी यहूदी विश्वासियों के लिए है, क्योंकि वे मंदिर में बलिदान चढ़ा रहे थे, वे मूसा की व्यवस्था मानने का स्वांग रच रहे थे। इस प्रकार वे प्रभु यीशु के बलिदान का अपमान कर रहे थे। पशु बलि प्रभु यीशु के क्रूस की छाया थी और प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद वे व्यवस्था पूरी हो चुकी थी। अतः परमेश्वर की आज्ञा के अधीन जो अनिवार्यताएं थी वे अब स्वैच्छिक पाप थी। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु द्वारा लहू बहाए जाने के उपरांत भी पशुओं का लहू बहाना भयानक और जघन्य बात थी। लेखक कहता है कि उन्हें मंदिर पर अब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पाप बलि का अंत हो गया है। यदि कोई पाप के निमित्त प्रभु यीशु की मृत्यु को स्वीकार ना करे तो पाप बलि दूसरी नहीं और परमेश्वर के पास आने का अन्य मार्ग या रास्ता भी नहीं है। अतः अब उन्हें मंदिर की अपेक्षा प्रभु यीशु की ओर निहारना होगा। यदि वे ऐसा न करें तो दंड पाएंगे। इस विषय में परमेश्वर का वचन अत्यधिक निश्चित है। लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, अर्थात पशु बलि चढ़ाते रहें, तो परमेश्वर इसे स्वैच्छिक विद्रोह कहता है। जानबूझकर किए गए पाप के लिए न तो पुराने नियम में और न ही नए नियम में पाप बलि का प्रावधान है। हम इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 27 पद में आगे पढ़ते हैं, हाँ दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे मित्रों, यदि प्रभु यीशु की मृत्यु जिसे 2010 वर्ष हो गए पर्याप्त नहीं, तो फिर कुछ नहीं है जो पर्याप्त होगा। परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए और कुछ नहीं करेगा। प्रभु यीशु दूसरी बार नहीं मरेगा और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। जिन्होंने सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद मंदिर के रीति रिवाजों का चलन अपनाया तो वह जानबूझकर किया गया पाप है। अब वह तुलना करता है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। इस तुलना पर आप ध्यान दीजिए जिसे हम आगे पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय के 29 पद में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। यह संभवतः परमेश्वर के वचन का सर्वाधिक पावन पद है। लिखा है, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। यह प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र के विषय में है। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु को अपर्याप्त जताना और उसकी मृत्यु को अनदेखा करना प्रभु यीशु के लहू का तिरस्कार करना है। सत्य से उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। यदि आप सुसमाचार सुनकर यीशु से फिर जाएं, तो मेरे मित्रों आपको यह जान लेना है कि आप नरक की ओर बढ़ रहे हैं। यह मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन और परमेश्वर कहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यीशु के सुसमाचार को सुनकर उसकी ओर फिर जाएं और अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करें। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर अवश्य न्याय करेगा। वह इस जगत का परम प्रधान शासक है। हम सबको उसके समक्ष खड़ा होना अवश्य है। पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पत्रस कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। मेरे मित्रों, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है कि हर एक व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता है, और परमेश्वर इसीलिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि प्रत्येक मनुष्य अपने पापों से बचाया जाए, अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। हम इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 31 पद में आगे पढ़ते हैं, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मेरे मित्रों, यह एक अति रोचक पद है और इस पर समय लगाना लाभकारी है। यह पद विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। एज्रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 9 पद में भी लिखा है, पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही, इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। इस पद में एज्रा पर परमेश्वर की दया दृष्टि है। परमेश्वर हम पर दया दृष्टि करना चाहता है, परंतु कभी कभी वह अपनी संतान पर ताड़ना भी देता है, अर्थात ताड़ना का हाथ भी उठाता है। मैं उसकी ताड़ना का अनुभव कर रहा हूं, आपने भी शायद उसका अनुभव किया होगा। भजन संहिता 32 के 4 पद में दाऊद अपना अनुभव व्यक्त करता है, कहता है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। मेरे मित्रों, परमेश्वर क्या कर रहा था? वह दाऊद को ताड़ना दे रहा था, दाऊद की ताड़ना कर रहा था। दाऊद ने अपना पाप छिपाना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उसे विवश कर दिया कि वह अपना पाप स्वीकार करके उसका समाधान करे। यही कारण है कि परमेश्वर का भारी हाथ हम पर जो उसकी संतान है पड़ता है। परमेश्वर की ताड़ना का हाथ उसके दंड के हाथ से सर्वथा भिन्न है। वह कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कड़वाहट के साथ पलटा नहीं लेता है, परंतु परमेश्वर न्याय अवश्य करेगा, और आज इस पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। सुनिए कि भजन संहिता 75 में और उसके 8 पद में भजनकार क्या कहता है, यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है, निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग भी पी जाएंगे। भजनकार और भविष्यद्वक्ता भी न्याय के दिन को प्रकोप के प्याले के भरने का दिन कहते हैं, और आज वह प्याला भर रहा है। परमेश्वर का काम जल्दबाजी का नहीं है, वह धीरजवंत है। वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु दंड का कटोरा भर रहा है। मेरे मित्रों, वह कटोरा कड़वा है। परमेश्वर के दंड का कटोरा उस हर एक का भाग है जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों तले रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु द्वारा आपके लिए किए गए क्रूस के कार्य का तिरस्कार करते हैं तो आपके लिए दंड निश्चित है, आपके लिए कोई भी आशा नहीं है। यह वही बात है जो लेखक इन यहूदी नवदीक्षितों को समझाना चाहता है। मूसा की व्यवस्था में वे जब चाहे पशु बलि चढ़ा सकते थे, परंतु अब उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें बस प्रभु यीशु के शरण में आ जाना है। हमें भी ऐसा ही करना है। अब हमें किसी प्रकार की कोई बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी भेंट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सिर्फ हमें प्रभु यीशु की शरण में आना है, क्योंकि उसी के द्वारा मुक्ति और उद्धार है। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब लेखक अपने पाठकों से कुछ व्यक्तिगत बात करता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। मेरे विचार में ये यहूदी उद्धार पा चुके थे। लेखक के मन में उनके विश्वासी होने पर संदेह नहीं था। तब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 उसके 33 और 34 पद में, कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साक्षी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। विश्वासियों को सार्वजनिक तमाशा बनाया जाता था। तब हम आगे पढ़ते हैं, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। कुछ विश्वासियों को तो जेल में डाल दिया जाता था और कुछ की संपत्ति छीन ली जाती थी, जैसा कि आज भी होता रहता है। लेखक उन्हें इस क्लेश के समय उनके विश्वास और सहनशीलता का स्मरण करवाता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 35 पद में हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, अर्थात अपने विश्वास को डगमगाने न दो, बिना डगमगाए दृढ़ता से थामे रहो। इब्रानियों की पत्री 10 उसके 36 पद में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धर्मशास्त्र में धीरज और विश्वास परस्पर जुड़े हुए हैं। क्लेशों के मध्य विश्वास रखकर उन्हें भावी आशा को धीरज धरकर थामे रहना है कि विश्वास पूरा हो जाए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 37 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। मैं प्रायः सुनता हूँ, प्रभु न आए तो मैं फिर मिलूंगा। प्रभु यीशु अपनी यात्रा स्थगित नहीं कर रहा है, उसका आना निश्चित है। कुछ लोग पूछते हैं, प्रभु कब आएगा? प्रभु मुझे अपनी यात्रा सूची तो दिखाता नहीं है कि मैं उसके आने का दिन जान सकूं। कुछ लोग उसके आने की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने उनका डायरी पढ़ ली हो। यह तो निश्चित है कि वह अपने निर्धारित समय पर आएगा, परंतु इसे कोई नहीं जानता। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 38 पद में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। यह पद हब्बकूक की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद का संदर्भ है। पौलुस भी इसे रोमियों की पत्री और गलातियों की कलीसियाओं को लिखे पत्र में काम में लेता है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर पापी को कैसे धर्मी ठहराता है? मेरे मित्रों, इब्रानियों को लिखी इस पत्री में धर्मी जन का विश्वास से जीवित रहना महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। इसमें जीवित परमेश्वर के भी अनेक संदर्भ हैं और इस पत्री में जीवित मध्यस्थ की भी चर्चा की गई है। वह प्रभु यीशु है, जी हाँ, जो हमारे लिए मरकर फिर से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर उपस्थित है। अतः हम जो उसके हैं, हमारे पास जीवित परमेश्वर है और उसके दाहिने ओर एक जीवित मध्यस्थ हमारे लिए उपस्थित है। तो हमें विश्वास का जीवन जीना है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा विश्वास अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है, वह परमेश्वर के वचन पर आधारित है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। गलातिया की कलिसियाओं को लिखते समय पौलुस भी विश्वास पर बल देता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर बने रहें। किस पर? विश्वास पर, क्योंकि इससे वह प्रसन्न होता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 39 पद में हम पढ़ते हैं, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मेरे मित्रों, लेखक यह नहीं मानता है कि वे पीछे हट गए हैं, परंतु वह उन्हें इसके संकट की चेतावनी दे रहा है। लेखक कहता है कि एक नाविक की नाई हम पतवार खोलकर आगे बढ़ जाएं। वह शंका व्यक्त करता है कि निराशा के कारण विश्वासी उन्नति करने से पिछड़ न जाएं, क्योंकि सताव, क्लेश और कठिनाइयां उनके सामने थी। हमारा उद्धारकर्ता जीवित है, अतः हम सब पतवार गिराकर परमेश्वर के लिए चल पड़ें। मित्रों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। फ्रांस देश में प्रोटेस्टेंट समुदाय के मसीही सताए गए थे और उनके साथ विश्वासघात भी किया गया था। फ्रांस ने उनका सर्वनाश कर दिया। उन्होंने युद्ध तो किया, परंतु वे अपनी मृत्यु के प्रति निश्चित थे। उनका नारा था, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन होगा। फ्रांस उनके विनाश से पूर्व का राष्ट्र फिर कभी नहीं बन पाया। मेरे प्रियो, हमें भी ऐसे ही विश्वासी बनना है। आज विश्वासियों में बड़ा हुल्लड़ है, शिकायत और आलोचना का बोलबाला है। इन शिशुओं के पेट से हवा निकालने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण पत्री का, इस अद्भुत पत्री का आशय है, हम बढ़े चलें। अतः हम परमेश्वर के लिए बढ़ चलें, उसकी निकटता में बने रहें, विश्वास में स्थिर रहें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को आदर मिल सके। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको देखना है कि क्या हमारे जीवन से परमेश्वर को आदर मिल रहा है। क्या हम उस प्रकार का विश्वासी जीवन जी रहे हैं जैसा वह मुझसे और आपसे उम्मीद करता है? यदि नहीं, तो आज मुझे और आपको भी जांचने और परखने की आवश्यकता है, ताकि हम वचन में बने रह सकें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने फिर से अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको विश्वास में बढ़ने में मदद करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR India, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
थी जिंदगी जब तूने ही निकाला, गिर रहा था जब मैं तूने ही संभाला। उलझती जिंदगी जब तूने ही निकाला, गिर रहा था जब मैं तूने ही संभाला। जो हुआ तेरे जैसा न यीशु मुझे दोस्त मिला है, मेरे पापों के कारण जिसने लहू अपना दिया है। हाँ तेरे जैसा न यीशु मुझे दोस्त मिला है, मेरे पापों के कारण जिसने लहू अपना दिया है। अब दे जिंदगी दे।